I want to sing very old song.
नमस्कार, आप सुन रहे हैं अर्थसूत्रा की कहानी मछली का तीसरा एपिसोड। आज का एपिसोड है मिस्टर गुड बैंक। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सबने हमारे पहले दोनों एपिसोड को इतना प्यार दिया। आपके प्यार भरे ईमेल और रिव्यूज़ पढ़ के बहुत खुशी मिली और इस पॉडकास्ट को जारी रखने में बड़ा सहारा मिला। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अमर और प्रेम ने एक ऐसा जाल बनाया जिसमें उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हमने ये भी देखा कि आपदाएं दो तरह की होती हैं, दो तरह के लोन और इस सरल द्वीप के गुंडे से भी मिले। आगे सुनते हैं इस छोटे से द्वीप की बढ़ती हुई कहानी। बड़े द्वीप की अर्थव्यवस्था। हमारा छोटा सा द्वीप अब बड़ा हो रहा है, नए नए लोग हैं और उनकी नई चुनौतियाँ। हम ये भी जानेंगे हमारे इस छोटे द्वीप के आर्थिक नियम बड़े समाज में काम कर सकते हैं भी कि नहीं। हरी की सरल और साधारण इच्छा आत्मबलिदान से पूंजी जमा करने से कई द्वीपवासियों को लाभ मिला। हरी को देख कई लोगों ने अपने जाल बनाए और अपना जीवन बेहतर किया, लेकिन सभी के पास जाल बनाने का और मछली पकड़ने का कौशल नहीं था। वे दूसरों से अपनी रोज की ज़रूरत की मछली खरीदते और बदले में अलग अलग उपकरण, औजार और ज़रूरतमंद चीज़ें बना के देते। कोई टेबल और कुर्सियाँ बनाता तो कोई झूला या हाथगाड़ी, नाव बनाने वाले थे, कोई बिल्डिंग भी बनाता था। द्वीप पर अब सब कुछ मिलता था। द्वीपवासियों के लिए हर चीज़ का मोल मछली के हिसाब से लगता था। सारे द्वीपवासी दिन की एक मछली खाते थे तो हर चीज़ का मोल उसी हिसाब से लगता था। जैसे द्वीपवासी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते गए और अपनी बचत बढ़ाते गए, उनके पास इस बढ़ती हुई पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यही नहीं, उनके पास उधार निवेश जैसे माध्यमों से अपनी पूंजी को बढ़ाने के उपाय भी बहुत कम थे। और व्यक्तिगत रूप से हर एक के पास ना तो समय था और ना ही वे व्यवसायिक प्रस्तावों को ठीक से परखने का अनुभव रखते थे। एक दिन समुद्र तट पर अमर प्रेम और इस द्वीप के एक ईमानदार और बुद्धिमान सदस्य मिस्टर गुडबैंक बातचीत कर रहे थे। तब अमर कहता है, मेरे घर में इतनी मछलियाँ हो गई हैं कि चलने की भी जगह नहीं बची। कम से कम सुरक्षित तो हैं, मेरे घर तो बिल्लियाँ मंडराती रहती है, चैन से सोने भी नहीं देती। प्रेम थोड़ा परेशान था। मिस्टर गुडबैंक द्वीपवासियों की यह समस्या से वाकिफ थे और उन्हें एक बहुत ही बढ़िया व्यापार का आइडिया सूझा। मैं द्वीप में पूंजी को संभालने के लिए एक बड़े भंडार की सुविधा का निर्माण करूं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे? अरे यही तो चाहिए हमें, अमर बड़े खुशी से कहता है। लेकिन यह भंडार चलेगा कैसे? प्रेम ने पूछा। मछली बचत और क्रेडिट कंपनी। मिस्टर गुडबैंक ने अपनी कंपनी खोल दी। हरी जैसे इस द्वीप समाज के कई सदस्य अपनी बचाई हुई मछलियाँ मिस्टर गुडबैंक की इस नई मछली बचत और क्रेडिट कंपनी में डिपॉजिट करने लगे। शुक्रिया हरी, ये लो आपकी रसीद। मिस्टर गुडबैंक ने हरी को अपने भरोसे के लिए धन्यवाद दिया और हरी को आश्वासन दिया, तुम्हारी ये जमा पूंजी बिना कोई काम किए अब ब्याज कमाएगी। शुक्रिया मिस्टर गुडबैंक, राहत हरी खुशी अपने घर लौट जाता है। इस तरह द्वीपवासी मिस्टर गुडबैंक को अपनी बचत के निवेश की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब अगर किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें किसी को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मिस्टर गुडबैंक से ही मिलना पड़ेगा। जैसे इस द्वीप का लोहार मिस्टर गुडबैंक के पास जाता है और कहता है, मुझे एक औजारों की फैक्ट्री बनानी है और उसे बनाने के लिए कुछ मछली उधार लगेगी। तुम्हारा नाम तो काफ़ी साफ है, लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारा काम भी अच्छा है। ये भी सही है कि एक औजारों की फैक्ट्री की इस द्वीप को काफ़ी ज़रूरत है। मैं खुशी खुशी तुम्हें इसके लिए लोन दूंगा। मिस्टर गुडबैंक लोहार से हाथ मिलाते हैं और लोन के पेपर साइन करते हैं। उनकी समझदारी और रूढ़िवादी देखभाल में द्वीप की बचत और व्यापार बड़े जोरों शोरों से बढ़ने लगे।
मिस्टर गुडबैंक बड़े अखंड व्यक्ति थे और वो छुट्टियों जैसी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर लोन देके अपने द्वीपवासियों की बचत को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। द्वीपवासी उन पर बड़ा विश्वास रखते थे, लेकिन मिस्टर गुडबैंक निर्यादयी भी नहीं थे। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई गंभीर समस्या में पड़ जाए तो उन्हें कंज्यूमर लोन देके वे मदद ज़रूर करते थे। ऐसी स्थिति के लिए बड़ी बुद्धिमानी से मिस्टर गुडबैंक ने कुल बचत का एक छोटा सा हिस्सा अलग एक इमरजेंसी फंड में रख दिया था। जो लोग ऐसा उधार लेते थे वे उसे चुकाने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि मिस्टर गुडबैंक ने उनकी ज़रूरत के समय पे उनकी बड़ी सहायता की और वे सब एक छोटे समाज में रहते थे जहाँ सभी एक दूसरे को जानते थे। पर अगर ऐसे कर्जदार किसी कारण अपना उधार ना चुका पाए तब भी द्वीप की बचत का मूल हिस्सा सुरक्षित होता और ज़रूरी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध रहता था। हमारे भारत में एक बड़ी अच्छी संस्कृति है। हर परिवार बचत को बड़ा महत्व देता है, खासकर घर की औरतें ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए नियमित पैसे बचाने की आदत रखती हैं। यह एक अमूल्य और महत्वपूर्ण संस्कृति है हमारे देश के लोगों की। ऐसा करने से हम ना केवल अपनी और अपने परिवार की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों की ज़रूरत के समय में भी काम आते हैं। आगे सुनते हैं। अब कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और इस द्वीप में बड़ी प्रगति आई। द्वीपवासियों की मेहनत और द्वीप की पूंजी मिस्टर गुडबैंक और उनके बेटों के केबल नेतृत्व में। लोग अब भी अपनी बचत बैंक में जमा करते थे और लोन के फैसले अब मिस्टर गुडबैंक के पोते के द्वारा किए जाते थे। लोग उन्हें प्यार से बाबूजी बुलाते थे। सार्वजनिक फंड। जाहिर है कि सारे निवेश प्रस्ताव बिना जोखिम के तो नहीं थे। कुछ लोग ज़्यादा जोखिम लेना चाहते थे, जो अगर काम कर जाए तो उनके लाभ भी उतने ज़्यादा मिलते। पर चूंकि बाबूजी ज़्यादा जोखिम वाले उधार नहीं देते थे, ऐसे लोगों को निवेश के लिए पैसे मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे अमोल। अमोल और उसके दोस्त एक मानव गुलेल का निर्माण करना चाहते थे। जब उन्होंने बाबूजी से पूछा, आप हमें उधार देने के लिए क्यों मना करते हो? हमारा आइडिया जरा अलग जरूर है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो बड़ा हिट होगा और हम सारा उधार चुका देंगे। बाबूजी को ऐसी योजना पर विश्वास बिल्कुल नहीं था और जोखिम देख के तो उन्होंने अमोल को टाल दिया। जैसे निराश अमोल और उसके दोस्त बाबूजी की ऑफिस से निकले तो किसी ने पीछे से आवाज दी,
क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं?
जी आप कौन हैं? अमोल ने पूछा।
अमरीश नाम है, सार्वजनिक फंड का मालिक। मेरे साथ अगर अपनी पूंजी जमा करोगे तो मैं तुम्हारी इस जोखिम वाली आइडिया में निवेश करूंगा।
अच्छा, बड़ा मुनाफा होगा, हम विश्वास दिलाते हैं, अमोल दिलासा दिलाता है। अमरीश जी को हम ठीक से जानते तो नहीं, लेकिन अगर वे हमारी कंपनी में निवेश करेंगे तो हमारी पूंजी को सार्वजनिक फंड में रखने का जोखिम तो ले ही सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो भाई लोग? अमोल अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश करता है और वे सार्वजनिक फंड में अपनी पूंजी जमा करवाते हैं। अब द्वीपवासी अपनी पूंजी की बचत का विश्वास बाबूजी की सूझबूझ पर रखते थे और वहीं सार्वजनिक फंड जोखिम लेने वालों के लिए निवेश करता था। कुछ समय बाद अमोल की ये अजीब आइडिया मानव गुलेल काम कर ही गई। कंपनी की प्रगति देख अमोल अमरीश जी से खुशी खुशी कहता है, लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है और हमारी मानव गुलेल कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है। शुक्रिया अमरीश जी हमारी आइडिया पे भरोसा रखने के लिए। अमरीश जी भी बड़े खुश थे, लेकिन अमरीश जी के सारे निवेश सफल नहीं होते थे। जैसे चक्का बोट कंपनी तो डूब ही गई। इस तरह द्वीप की अर्थव्यवस्था सभी के हित में काम करती रही। पानी की समस्या। द्वीप में साफ पानी की बड़ी समस्या थी। पानी तो काफ़ी था,
लेकिन पानी पहाड़ के नीचे की झील से लाना पड़ता था, इसलिए लोग झील के करीब ही रह पाते थे। अब ऐसा हुआ कि एक साल बड़ा भयानक सूखा पड़ा। समझ लीजिए कि द्वीप समाज बस खत्म ही हो चुका था। बड़ी मुश्किल से वे एक दूसरे की मदद करके बचे। द्वीप समाज को बड़ा नुकसान हुआ। अब ऐसी आफत समाज को नष्ट ना कर पाए और लोगों की तकलीफ कैसे कम की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। सारे इसका हल ढूंढने में लगे थे। एक दिन झील किनारे बैठे बैठे सेजल, जो द्वीप पर बास्केट बनाती थी, उसके दिमाग के चक्के घूमने लगे। ये प्रकृति में जब बारिश होती है या पहाड़ से पानी नीचे आता है तो वो तालाबों में इकट्ठा होता है। झील का पानी जब कम होता है तब हम तालाब से ही तो पानी लेते हैं, तो हम एक बड़ा तालाब ही क्यों ना बनाएं? और हम इस तालाब से अगर ऐसे छोटे छोटे नाले हमारे घर तक ले आए तो हमें झील तक आना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही सेजल को ये आइडिया आया, वो दौड़ती हुई बाबूजी के पास गई और अपना आइडिया बताया। बाबूजी भी इस समस्या को लेके बड़े परेशान थे और सेजल का ये आइडिया सुन के बड़े प्रसन्न हुए। ये आइडिया उन्हें जम गई। प्रोजेक्ट तो बड़ा था, लेकिन द्वीप समाज की पूंजी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करना अब द्वीपवासियों के लिए संभव था। बाबूजी बड़े खुशी से बोले, प्लान बनाओ, मैं तुम्हें इसके लिए लोन ज़रूर दूंगा। वाटरवर्क्स प्रोजेक्ट। सेजल ने दिन रात मेहनत करके तालाब का प्लान तो बना लिया। प्रोजेक्ट बड़ा था, तालाब की जगह, आकार, माप, पाइपलाइन। सेजल ने सारा प्लान कुछ समझदार लोगों के साथ मिलके बनाया। वाटरवर्क्स प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ 250 लोग और 2 साल की मेहनत की ज़रूरत थी। इसके लिए कुल 5 लाख मछलियाँ लगने वाली थी। इस प्रोजेक्ट में द्वीप की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा निवेश किया गया। अगर ये सफल नहीं हुआ तो समाज की पूंजी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर ये काम कर गया तो इसका लाभ भी कई गुना मिलेगा। वाटरवर्क्स का काम बड़े जोरों शोरों से चालू हुआ और लोगों ने बड़ी मेहनत की। काम तो बड़ा मेहनत का था, लेकिन सारे बड़ी खुशी से काम कर रहे थे, क्योंकि हकीकत में वे खुद के लिए ही काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि इसका लाभ उन्हें, उनके परिवार और उनके समाज को मिलेगा। धमाकेदार सफलता। देखते देखते 2 साल बीत गए और वाटरवर्क्स का काम भी पूरा हो गया। पाइपलाइन से अब द्वीप के कोने कोने तक पानी मिलने लगा। इस प्रोजेक्ट से द्वीप समाज को बेहिसाब फायदा हुआ। लोगों की सुविधा और द्वीप की अर्थव्यवस्था में बड़ी प्रगति आई। लोग अब दूर दूर तक अपना घर, खेत, उद्योग लगा सकते थे। सिंचाई से फसल खराब होने की संभावना भी कम हुई। हर दिन पानी ढोने की ज़रूरत से मुक्त अब द्वीपवासी और दूसरे नए नए काम कर सकते थे। अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए उनके पास ज़्यादा समय और ऊर्जा बचने लगी। वाटरवर्क्स प्रोजेक्ट ने अपना उधार और ब्याज समय से चुका दिया और द्वीप की बचत पूंजी और बढ़ी। बड़ा अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र। कुछ द्वीपवासियों को ये लगने लगा कि छोटे द्वीप के अर्थशास्त्र के सिद्धांत बड़े और जटिल समाज को नहीं लगाए जा सकते, उनके सिद्धांत अलग होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बुनियादी आर्थिक सिद्धांत एक अर्थव्यवस्था के आकार बदलने से नहीं बदलते, लेकिन जटिल और बड़े बड़े उलझे हुए शब्दों के कारण सिर्फ उन्हें पहचानने में मुश्किल हो सकती है। पूंजी, ब्याज, बचत, उधार, निवेश और सामाजिक और आर्थिक प्रगति के बीच का संबंध हमेशा बरकरार रहता है। जैसे गणित के सिद्धांत सवाल के आकार के साथ नहीं बदलते। एक बार 2 गुना 2 करो या 2000 बार 2 गुना 2 करो, सिद्धांत वही है। चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कैसे हमारा ये छोटा द्वीप बड़ा हुआ और नए नए द्वीपवासियों से भी मिले, कैसे मिस्टर गुडबैंक सारे समाज के जीवन का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं, सेजल की बुद्धि और वाटरवर्क्स प्रोजेक्ट की धमाकेदार सफलता। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस द्वीप की सरकार कैसे बनती है और क्या करती है। अब समय आ गया है इस एपिसोड के सवाल का। सवाल है, क्या सही में छोटे समाज के आर्थिक नियम बड़े समाज में काम कर सकते हैं और क्यों? इसका जवाब हमें आप हमारे ट्विटर पे भेज सकते हैं और सबसे बढ़िया उत्तर भेजने वाले को 1000 सतोशी का इनाम दिया जाएगा, जिसे हम ट्विटर पे घोषित करेंगे। सतोशी क्या होता है अगर नहीं जानते तो डक डक गो करिए, या शो नोट्स में इसकी जानकारी की भी लिंक छोड़ी है। आपको ये एपिसोड अगर पसंद आया तो खूब शेयर करिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और रिव्यू ज़रूर छोड़िएगा अपने पसंदीदा पॉडकास्ट एप्लीकेशन पे। हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाने में। अगर आप ये एपिसोड पढ़ना चाहते हैं तो इस एपिसोड की प्रतिलिपि यानी ट्रांसक्रिप्ट आपको हमारी वेबसाइट www.arthasutra.org पे मिलेगी। अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो हमें आप ट्विटर पे ज़रूर लिखिए। अब अगले एपिसोड तक आपसे इजाज़त लेता हूँ।